ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் ஈஷா வாசியோபனிஷத், பிரசன்டட் பை சுவாமினி சந்தோஷி மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
சத்கன் சித்கன் ஆனந்தகன் கல்யாண குணகண நிலை அவ்யக்த அவிநாசி சர்வேஸ்வர் ஜகத் நியந்தா ஜகதாதார் கருணா வருணாலய பரமேஸ்வர் கி அசீம் அஹேது கி கிருபா கே சாத் ஈஷாவாஸ்ய உபநிஷத் பர் ஹம் சப் லோக் விசார் கர் ரஹே தே. ஈஷாவாஸ்ய உபநிஷத் கி திருஷ்டி சே ஹமே அப்னா ஜீவன் ஜீனா ஹை, ஆத்ம ரக்ஷா கர்னி ஹை, ஆத்ம பாலன் கர்னா ஹை. ஈஷாவாஸ்யமிதம் சர்வம் ஜக்த்யான் ஜக்தேன் தேன புஞ்சிதா மா கஷ்சித் சிதனம். சர்வத்ர ஈஸ்வர்மய திருஷ்டி, சம்பூர்ண ஜகத் கோ ஈஸ்வர் சே ஆச்சாதித் கர்கே, ஆச்சாதித் மனே டக் கர், அப்னி திருஷ்டி சே ப்ரஹ்ம பகவத் திருஷ்டி சே பகவத் ரூபமே ஜகத் கா ஆச்சாதன் கர்த்தே ஹுயே டக்தே ஹுயே, माने संपूर्ण जगत ईश्वर रूप परमात्म रूप दर्शन करते हुए और त्याग पूर्वक जीवन का पालन करते हुए अर्थात आत्मरक्षा करते हुए और कहीं भी किसी के साथ लोभ न करते हुए, मां कश्चिदनम माने लोभ न हो, निर्लोभता पूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए, जीवन आत्मरक्षा करते हुए हम इस संसार में जिए. दूसरी बात रही कि कर्म करते हुए संसार में जिए, 100 साल तक कर्म करते हुए इस संसार में रहकर, क्योंकि ऐसा यदि कर्म करते हुए संसार में नहीं जिए, न कर्म में लिप्त थे न रहा, यदि कर्म में हमारी आसक्ति हो गई, निरासक्त भाव से कर्मा अभिमान भाव से रहित होकर अर्थात देह अभिमान से, देहाभिमान जाता नहीं, देह में अहम बुद्धि बनी रहती है, तो तब ऐसे देहाभिमानियों के लिए केवल एक मार्ग बचता है, वह मार्ग है कृतत्व बुद्धि के द्वारा. कर्म करते हुए कर्म निष्कर्म बन जाए. निष्कर्मता का यदि उदाहरण देखा जाए तो भगवान सूर्य से बढ़कर के और कोई उदाहरण नहीं हो सकता. एक सूर्य भक्त भगवान सूर्य देव की आराधना कर रहा है और आराधना करते हुए सूर्य भगवान से बोल रहा है कि हे प्रभु, आप कितने दयालु हैं, कितने उपकारी हैं और आप कितने महान हैं कि प्रतिदिन आपको अंधकार के साथ लड़ाई लड़नी पड़ती है. अंध दैत्यासुर को, इस अंधकार रूपी दैत्य को, असुर को समाप्त करके, इस असुर को पराजित करके आपको नित्य प्रति जगत को प्रकाश देना होता है. संपूर्ण जगत आपसे प्रकाशित हो रहा है, संपूर्ण जगत को आप प्रकाश दे रहे हैं. हे देव, आप बड़े दयालु हैं, आप बड़े उपकारी हैं, आप ये महान कार्य, आप जैसा पुरुषार्थी, अब जैसा महान कार्य करने वाला भला और कौन हो सकता है. सूर्य देव की बड़े प्रेम से उपासना कर रहा. जब अपने उपासक की ये प्रार्थना सूर्य देव ने सुनी, भगवान सूर्य प्रत्यक्ष हुए और सूर्य उपासक से कहते हैं कि देखो भक्त, तुम जो कुछ भी मुझे कह रहे हो, मैं ये सब कुछ नहीं करता हूं, मैं तो कुछ करता ही नहीं. सूर्य उपासक कहता है, प्रभु आप कुछ करते नहीं, रोज अंधकार को भगाते हैं, प्रकाश देते हैं। बोले नहीं, मैं कुछ करता ही नहीं। भगवान आप कर तो रहे हैं। तब सूर्य देव ने समझाया, जो कुछ भी तुम ये कह रहे हो कि तू आप प्रकाश देते हो, समस्त आपके प्रकाश से संपूर्ण जीव जीवंत होते हैं, सबको जीवन प्रदान करते हैं। यदि आप न हो तो सकल सृष्टि का जीवन समाप्त हो जाए, आप ही के कारण तो संपूर्ण जीव जीवित हैं, सृष्टि का व्यवहार चल रहा है। भगवान सूर्य ने कहा, ये सब जो कुछ भी तुम बोल रहे हो ये मैं कुछ नहीं करता हूं, प्रकाश मेरा स्वभाव है, मैं अपने स्वभाव से ये कार्य कर रहा हूं, ये तो मेरा स्वभाव है। उसे केवल स्वभाव कहकर भगवान सूर्य देव ने उसको छोड़ दिया। तो ये क्या हुआ, कर्म होते हुए भी वो कर्म अकर्म बन गया। कब? जब उसने कर्म को स्वभाव में ले लिया। तो स्वाभाविक कर्म वो कभी कर्तापन के अभिमान को मैं नहीं बांधता, इसलिए कर्म में निष्कर्मता की सिद्धि हो, कर्म निष्कर्म बन जाए, कर्म अकर्म बन जाए। इसलिए उपनिषद हमें कहती है, दूसरे जीवन जीने की जो दृष्टि है वो अकर्म बन निष्कर्म के अनुसार कर्म करते हुए, माने निष्कर्म क्या, दया करना, सेवा करना, कृपा करना, धर्म में शास्त्र विहित कर्मों को करना, अर्थात कर्म करने से अभिप्राय है जिन्हें शास्त्र हमें करने की अनुमति देते हैं, यज्ञादि का करना, दान का करना, तप का करना, सेवा का करना, जो शास्त्र विहित कर्म है, जिन कर्मों को करने का शास्त्र हमें उपदेश करते हैं। शास्त्र जिन कर्मों की अनुमति नहीं देते हैं वो कर्म हमारे यहाँ अधर्म कहे गए। जो वेद विहित कर्म हैं, जिन कर्मों को वेद हमें करने की आज्ञा देते हैं उन्हीं कर्मों को धर्म कहा गया है। जो कर्म वेद विहीन है, जिन्हें वेद नहीं आज्ञा देते उन कर्मों को अधर्म कहा गया है। तो यहाँ कुर्मण्ये कर्माणि माने वेद विहित कर्म, शास्त्र विहित कर्म, शास्त्र के अनुसार जो कर्म है उन कर्मों को करना हमारा स्वभाव बन जाए, और स्वभाव से उन कर्मों को करते हुए अपने जीवन को हम जिए, दूसरा मार्ग ये है। और तीसरी चर्चा कल मैंने की थी, यदि ऐसा नहीं हुआ तो असूरिया नामते लोका, माने असूर्य कहा गया है जहाँ इंद्रिय लोक है। इंद्रिय लोक में प्रकाश नहीं है, विवेक नहीं है, अज्ञान नहीं है, अज्ञान है, विवेक नहीं है, तो इसलिए यह सब इंद्रियों के भोगों में, इंद्रिय भोगों की जहाँ तक गणना हम करते हैं नारायण, तो देवताओं को भी असूर्य कहा गया है। देवताओं के पास भोग है, इंद्रिय भोग है, उन भोगों को भोगने की व्यवस्था उनके पास भी है, देवताओं के पास भी संपत्ति है, और उस संपत्ति का भोग देवता लोग भी करते हैं। तो भोग भोगने के बाद शीर्णे पुण्य मृत लोगे प्रवसन्ति, ये जितने भी भोग हैं, बोले ये किसके द्वारा प्राप्त होते हैं, पुण्य के द्वारा प्राप्त होते हैं, और पुण्य को भोगने के लिए भी शरीर की प्राप्ति होती है, पाप भोगने के लिए भी शरीर की प्राप्ति होती है। यह जो पाप पुण्य का भोग है, वासनामय भोग शरीर, जिस वासनामय शरीर से हम पुण्य का भोग करते हैं, तो यातनामय शरीर से हम पाप का भोग भोगते हैं। एक शरीर होता है यातनामय, जिसमें केवल यातना ही यातना है, पीड़ा ही पीड़ाएं मिलती हैं, वह शरीर माने दुख भोगने के लिए है, पाप भोगने के लिए है। दूसरा शरीर वासनामय है, तो ये वासना किसके कारण है, बोले अज्ञान के कारण। तो इस असूर्या नामते लोका अंधेन तमसा व्रता, ऐसे जो लोग हैं बोले जो केवल इंद्रिय भोगों में लगे रहते हैं, दिन रात इंद्रियों के साथ लगे रहते हैं और आत्मघात करते हैं, आत्म स्वरूप को नहीं पहचानते हैं, उन लोगों को कहां जाना पड़ता है? बोले जो आत्म दोषी हैं, आत्मघाती हैं, उन्हें ही जन्म मरण प्राप्त होते रहते हैं। पुनरभि जन्मम पुनरभि मरणम पुनरभि जननी जटरे सैनम। तो चौथे मंत्र में स्पष्ट करते हैं कि वह आत्म स्वरूप, बोले जो आत्म है स्वरूप है, उसमें निष्ठावान व्यक्ति के लिए अनेज देकम मनुषो जीवयो नैनम देवा आपनमन पूर्वमर्षत तद्धावंतो अनन्योति तिष्ठति तस्मिन्नापो माति सर्वा दधाति। उपनिषद कहती है वह आत्म तत्व जो अपने स्वरूप से कभी विचलित होने वाला नहीं है, अर्थात आत्मा अपने स्वरूप में स्थित होता हुआ भी तथा मन से भी अधिक वेग गतिवान पाया गया है। बोले जिसकी गति मन से भी अधिक है, अर्थात संकल्प आदि के द्वारा हम बैठे यहां हैं, मन में संकल्प होता है, संकल्प के साथ, संकल्प स्फुरित होने के साथ ही हम कहां पहुंच जाते हैं, माने एक क्षण में मन के संकल्प हुआ द्वारिका पहुंच गए, मन में संकल्प हुआ बद्रीनाथ पहुंच गए, मन में संकल्प हुआ अमेरिका में पहुंच गए। अर्थात जहां ये मन जाता है, जहां का संकल्प करता है, और मन के इस संकल्प से भी पहले, माने मन जो इतनी जल्दी संकल्प के द्वारा पहुंचा और पहुंच करके जिस स्थान में पहुंचा है वो आत्म, वो चेतन उससे भी पहले वहां विद्यमान होता है। माने जो मन की गति का भी, संकल्प की गति का भी अतिक्रमण करने वाला, माने उससे भी आगे निकलने वाला, जहां मन, जिसके लिए मन ने सोचा उससे पूर्व वो वहां उपस्थित है, ऐसा कोई जगह नहीं है जहां वह उपस्थित नहीं हो। समस्त शरीरों में, समस्त प्राणियों के अंदर जो प्राण में प्रवृत्त होकर सबको कर्म में गति करा रहा है, माने जिसके द्वारा संपूर्ण यदि प्राणों में गति, वह चेतन जो मन में स्फुरित होकर, क्योंकि मन जब तक मन में चेतनता का स्फुरण नहीं होगा, मन संकल्प नहीं कर सकता। माने आत्मा जो ध्रुव रूप है, स्थिर है, और स्थिर होते हुए भी जिसमें स्पृणाएं स्पंदन हो रहा है, स्पृणा हो रही है, जिसकी स्पृणा से मन इतनी तेज गति के साथ, संकल्प आदि के साथ कहां पहुंच जाता है, जहां मन पहुंचता है उससे पहले वहां वह आत्म स्वरूप स्थित उपलब्ध मिलता है, माने प्राप्त है, वहां भी स्थिर है। और समस्त प्राणियों के अंदर जो कर्म में प्राण बनकर के प्रवृत्ति करा रहा, उठना बैठना चलना, ये सब गति किसकी है? बोले प्राणों की है। प्राणों की गति को कैसे समझें? जैसे उदाहरण के लिए मन में संकल्प हुआ, और संकल्प जब मन किया तब प्राण में गति हुई, और प्राणों की गति, मन में संकल्प हुआ हाथ उठाओ तो प्राणों में गति प्रदान हुई, हाथ ऊपर उठ गया। एक हाथ को ऊपर उठाने के लिए भी, इस इंद्रिय को, कर्मेंद्री को ऊपर करने के लिए पहले किस में हुआ? बोले मन में स्पृणा हुई, और मन में संकल्प हुआ, और संकल्प होने के बाद प्राण में गति हुई, और गति होने के साथ हाथ ऊपर उठा। इस प्रकार जो संपूर्ण प्राणियों के अंदर कर्म में गति कराने वाला है और वह स्वयं कैसा है, बोले स्थिर है, स्थिर है, उसमें कोई कंपन नहीं है, उसके अंदर वो ध्रुव है, निश्चित है, स्थिर है। आत्मा स्थिर का अभिप्राय ऐसा नहीं कि एक जगह जम करके बैठ गया हो, माने स्थिरता का अर्थ ये है कि वो चारों तरफ से इतना परिपूर्ण है, व्याप्त है, उसके भीतर कहीं से सुई की नोक समा जाए इतनी भी गुंजाइश नहीं है। जैसे आप शालिग्राम के रूप में या नर्मदेश्वर के रूप में शिला को देखते हैं, पत्थर को देखते हैं, और उस पत्थर के ऊपर नर्मदेश्वर को स्नान कराने के लिए आप जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं, शहद चढ़ाते हैं, पंचामृत से जब स्नान करते कराते हैं, तो वो इतना ठोस है कि जो कुछ भी ऊपर डालते हैं वो ऊपर से नीचे बह जाता है, परंतु कोई चीज उसके अंदर घुसती हो, शिवलिंग के भीतर कोई चीज जाती है, बोले नहीं। तो वो शिवलिंग क्या है, ध्रुव है, स्थिर है, और उसके अंदर इतनी पूर्णता है, कहीं से इतना पिलपिलापन, खोखलापन, कहीं से कोई गुंजाइश नहीं है कि एक बूंद भी उसके भीतर चली जाए। उसी तरह से अखिल ब्रह्मांड में वो परमात्म तत्व इस प्रकार परिपूर्ण है, ऐसा ठोस है, व्याप्त है, और ठोस होता हुआ भी जड़ नहीं है, चेतन है, और उस व्यापक परमात्मा में कहीं कुछ चीज जाने की गुंजाइश नहीं है, इसलिए उसको कहा ध्रुव, ऐसा अटल, स्थिर। और उसके अंदर बोले फिर क्या है, ऐसा होने पर भी वो मन की गति कराने वाला, मन में जो संक इस भाव से व्याप्त होता हुआ वो आत्मा मन में संकल्पादि के द्वारा, मन को स्फुरित, और मन में जो संकल्प हो रहे हैं, शुभ संकल्प हो, विकल्प हो, ये सब मन में जो संकल्प विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं, इन संकल्प विकल्पों की उत्पत्ति मन स्वयं तो नहीं कर सकता, बोले मन में इनकी स्फुणा करने वाला भी वह स्वयमेव है। इसीलिए कहा मन में जो संकल्प आते हैं, शुभ संकल्प हो, ये शुभ समस्त तन में मना शिव संकल्प मस्तु, जो मन के अंदर शुभ संकल्प है, इस संकल्प की स्फुणा, मतलब जड़ में स्फुणा नहीं होती, यह तो चेतन से होती है, और सबके मन और मन फिर संकल्प करके गतिवान होता है, उसकी गति है, बोले वो पहुंच जाता है, और उसकी जो जाने की गति है, मन जिस गति से जा रहा है उससे भी, जिस में जा रहा है उससे भी पहले वो वहां उपस्थित है, क्योंकि वह तो व्यापक है, सर्वव्यापी है, तो इसलिए वह वहां अनुपलब्ध नहीं है, वो वहां भी प्राप्त है। इस प्रकार आत्मा के लिए कहा गया है कि जो समस्त प्राणियों में, सर्व काल में, सर्व देश में, और जो सब जगह सबका विद्यमान रहने वाला है, ऐसे आत्म तत्व को जो सब कर्मों में प्रवृत्ति कराने वाला है, सबके प्राणों का संचालन करने वाला है, सबके प्राण में, सबके प्राणों के साथ, जो समस्त जीवों के प्राणों के साथ गति कराने वाला है, वह आत्म तत्व है, उसे आत्मा पहचानना चाहिए। इसी मंत्र का आगे और स्पष्ट करते हुए कहा, तदेजति तन्नो जति तद्दूरे तदंतके तदंत्रस्य सर्वस्य तदुसु सर्वस्य वाह्यतः। उसके लिए वह आत्म तत्व चलता भी है और नहीं भी चलता है, और वह दूर भी है और समीप भी है, वह सबके अंदर भी है और वही सबके बाहर भी है। हम कह तो देते हैं वह सब जगह है, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे सर्व व्यापक है, वह आत्मतत्व चलता भी है और नहीं चलता है। तदेजति तन्नोजति, वह चलता है, गतिमान है और उसमें कोई गति नहीं है। मैंने अभी कहा कि भगवान के लिए आप कहते हैं बिनु पग चले, उसके पांव दिखते नहीं है पर सब जगह उपस्थित मिलता है। बिन कर कर्म करे विधि नाना, उसके हाथ दिखाई नहीं देते पर सब काम होते उसी से, सबको सब कुछ करने वाला वही है। इसीलिए उपनिषद कहती है वह जो आत्म तत्व है वो चलता भी नहीं है और चलता भी है, दूर भी है और पास भी है। दूर तो इतना दूर, वर्षों लग गए खोजते 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 खोजते, अब मिल जाए। जप किया, तप किया, पूजा किया, पाठ किया, स्तुति की, प्रार्थनाएं की कि शायद अब मिल जाए, अब मिल जाए, अब मिल जाए, परंतु वो ऐसा लगता है कि बहुत दूर है, मिला नहीं। खूब खोजा तुझे, कुछ पता तेरा पाया नहीं, जब तेरा पता पाया तो अब मेरा पता नहीं। खोजने वाले ने इतना खोजा, खूब ढूंढा तुझे, खूब ढूंढा, खूब खोजा, बोले खोजते गए, खोजते खोजते सदियों से उसे खोजते ही रहे, ढूंढते ही रहे, कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। साधक लोग जो साधक हैं, जो उसकी साधना में लगे हुए हैं और दिन रात अपने प्रयास में, कोशिश में रत है, और कोशिश भी कैसे कर रहे हैं उसके लिए उपाय बताया गीता में भगवान ने। ऐसे कोशिश करके नहीं, श्रद्धा वा लप्ते ज्ञानम तत्परम संगेन्द्रिया, श्रद्धावान होकर, संयमी होकर, श्रद्धावान होकर के, संयमी होकर के, इसीलिए कहा श्रद्धा वा लप्ते ज्ञानम तत्परम संगेन्द्रिया, और बड़ी तत्परता के साथ माने बड़े परिश्रम के साथ, और परिश्रम भी एक समय का नहीं, निरंतर परिश्रम के साथ लगे हुए, श्रद्धा के साथ, संयम के साथ, परिश्रम में जो जुटे हुए हैं वही उस आत्म तत्व को, ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए कहा कि जो बड़े संयम के साथ, तत्परता के साथ लगे हैं पर मिला नहीं, खोज रहे हैं, ढूंढने में लगे हैं, क्योंकि कितने जाने कितनी दूर है, बात दूर की नहीं है ना। उपनिषद कहती है दूर है, बहुत दूर है, परंतु पास भी बहुत पास है, अत्यंत समीप। बोली ये दूर और पास की कैसी बात है, उसके लिए बताया कि जल में मीन पियासी मोहे देखत आवे हांसी। बड़ी विचित्र सी बात लगती है कि मछली जल के भीतर रहती है और बड़ी तेजी से वो जल के अंदर इधर से उधर, इधर से उधर, उधर से इधर, दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़ भाग में लगी हुई है। उस पानी के अंदर बड़ा दौड़ रही है, वो भाग रही है। किसी ने उसे देखकर, कबीर जी ने उसे देख करके मछली से कहा कि तुम इस तरह से जल के अंदर मारी मारी बेचैन सी घूम रही हो, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं कभी बाएं, जल में इतना तुम जो बेचैनी से भाग रही हो, दौड़ रही हो, इसका कारण क्या है। तो मछली ने कहा मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी है, इसलिए मैं पानी को खोज रही हूं अपने प्यास को मिटाने के लिए। पानी को खोजने की बात जब मछली ने कही तो कबीर जी को देखकर हंसी आ गई। जल में मीन पियासी मुहे देखत आवे हंसी, मुझे देख करके हंसी आ रही है मछली की बात सुन करके कि वो कहती है मैं प्यासी हूं, मैं पानी खोज रही हूं। तो मछली का जल को ढूंढना जैसा प्रयास है, कोशिश है, ऐसा ही, ऐसी ही कोशिश जीव की, ब्रह्म की खोज के लिए, परमात्मा की खोज के लिए। बोले खोज रही है, बहुत जोर की प्यास लगी है, पानी मिले तो मछली की प्यास बुझे। बोले मछली जल के भीतर रहती हुई भी प्यासी क्यों रह गई? उसका कारण बताते हैं कि मछली के कंठ में दो सुराग होते हैं और जब पानी उसके अंदर जाता है उससे नीचे निकल जाता है, कंठ गिल सूखा ही रह जाता है। उसे कंठ में जब जल जाए तो उसकी प्यास बुझे, मछली के मोम सुराखों से पानी निकल आता है और जिसके कारण वो बिचारी बिना पानी के रह जाती, कदाचित वो उल्टी हो गई और पानी उससे उसके सुराख बंद हो जाते हैं, पानी अंदर चला जाता है, वही जल उसके लिए मृत्यु का कारण भी बन जाता है। तो संत ने कहा उससे, बोले मछली तेरे दाएं बाएं ऊपर नीचे चारों ओर जल के अतिरिक्त कुछ नहीं है, तो उसको ढूंढने के लिए तेरा प्रयास, तेरी कोशिश जिसे तू कर रही है, वो कोशिश कैसी कोशिश है? क्योंकि जल के अतिरिक्त तो तेरे पास, तेरे आसपास कुछ भी नहीं है। ठीक उसी प्रकार उपनिषद कहती तदेजति तन्नो जति तद दूरे तदंतिके, वो बहुत दूर भी है। दूर कब है? बोले जब ना समझी है, अविवेक के कारण, अज्ञान के कारण वो बहुत दूर है। ना समझी समझ में आ गई, बात केवल समझ की है नारायण, समझ में आ गई तो चुटकी का खेल है, नहीं तो जन्म से जन्म का फेर है।